ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 12। अध्याय का शीर्षक है मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिवजी का मोहित होना और श्लोक संख्या है 23 से लेकर 31 तक। तो 23 से 30 तक हम पढ़ेंगे अनुवाद, उसके बाद फिर हम श्लोक की चर्चा करेंगे। तो 23 का अनुवाद इस तरह है, जब गेंद उसके हाथ से उछलकर दूर जा गिरी तो वह स्त्री उसका पीछा करने लगी, किंतु जब शिवजी इन लीलाओं का निहार कर रहे थे तो अचानक वायु का झोंका उसके सुंदर वस्त्र तथा उसकी करघनी को जो उसे ढके हुए थे उड़ा ले गई। 24 इस प्रकार शिवजी ने उस स्त्री को देखा जिसके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित था और उस सुंदर स्त्री ने भी उनकी ओर देखा। अतएव यह सोचकर कि वह स्त्री उनके प्रति आकृष्ट है, शिवजी उसके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो गए। छोटा सा तात्पर्य है, शिवजी उस स्त्री के शरीर का अंग प्रत्यंग देख रहे थे और वह भी उन्हें चंचल आंखों से देखे जा रही थी। इस प्रकार शिवजी ने सोचा कि वह भी उनकी ओर आकृष्ट है, अतएव अब उन्होंने उसका स्पर्श करना चाहा। 25वां श्लोक, उस स्त्री के साथ रमन करने की कामेच्छा के कारण अपना विवेक खोते हुए शिवजी उसके लिए इतने पागल हो उठे कि भवानी की उपस्थिति में भी वे उसके समीप जाने में तनिक भी नहीं हिचकिचाए। 26 वह सुंदरी पहले ही नंगी हो चुकी थी और जब उसने देखा कि शिवजी उसकी ओर चले आ रहे हैं तो वह अत्यंत लज्जित हुई। इस तरह वह हंसती रही, किंतु उसने अपने आप को वृक्षों के बीच छिपा लिया, वह किसी एक स्थान पर खड़ी नहीं रही। 27 शिवजी की इंद्रियां विचलित थी और वे काम वासनाओं के वशीभूत होकर उसका पीछा करने लगे जिस तरह कोई कामी हाथी हथनी का पीछा करता है। 28 तेजी से उसका पीछा करते हुए शिवजी ने उसके बालों का जूड़ा पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया, फिर उसके न चाहने पर भी उन्होंने अपनी बाहों से में भरकर उसका आलिंगन कर लिया। 29 और 30 इकट्ठा है इसका अनुवाद, जिस तरह हाथी हथनी का आलिंगन करता है उसी तरह वह स्त्री जिसके बाल बिखरे थे शिवजी द्वारा आलिंगित होकर सांप की तरह सरकने लगी। हे राजा, यह बड़े और ऊंचे नितंबों वाली स्त्री भगवान द्वारा प्रस्तुत की गई योग माया थी। उसने अपने को जिस तिस भांति शिवजी के आलिंगन से छुड़ाया और वह भाग गई। 31वां श्लोक हम पढ़ेंगे। तस्यासो पदवीं रुद्रो विष्णोरद्भुत कर्मणः प्रत्यपद्यत कामेन वैरिनेव विनिर्जितः। शब्दार्थ, तस्य उनका शिवजी, असौ शिवजी, पदवी स्थान, रुद्र शिवजी, विष्णु भगवान विष्णु की, अद्भुत कर्मना वह जो अद्भुत कार्य करता है, प्रत्यपद्यत पीछा करने लगा, कामेन काम वासना के कारण, वैरी नाइव शत्रु की तरह, विनिर्जिता सताया गया। अनुवाद। शिवजी भगवान विष्णु का जो आश्चर्यजनक कार्य करने वाले हैं और जिन्होंने मोहिनी रूप धारण कर रखा था, ऐसे पीछा करने लगे जैसे वे काम वासना रूपी शत्रु द्वारा सताए गए हों। तात्पर्य, शिवजी माया का शिकार नहीं हो सकते, अतः यह समझ लेना चाहिए कि वे भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति से पीड़ित किए जा रहे थे। भगवान विष्णु अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अनेक आश्चर्यजनक कार्य संपन्न कर सकते हैं। प्रास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, श्वेताशतर उपनिषद 8:6-8। भगवान की विविध शक्तियां विभिन्न हैं जिनसे वे अत्यंत कुशलता से कार्य कर सकते हैं। किसी कार्य को दक्षता से करने हेतु उन्हें सोचना नहीं पड़ता। यद्यपि शिवजी उस नारी से सताए जा रहे थे, किंतु यह बात समझ लेनी चाहिए कि ऐसा एक नारी नहीं कर रही थी, किंतु भगवान विष्णु स्वयं कर रहे थे। जय श्री गोपाल जी। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्री उत्तपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकर्तृभ्य श्रीवा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, सबकी समस्या है ये, इससे यहाँ पे विचार किया जा रहा है। तो बहुत ही ये पावरफुल है, जो हमारी जो इंद्रिय तृप्ति की भावना है, इंद्रिय तृप्ति करने की जो हमारी ये फोर्स है, ये बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। उसी का उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पे। जैसे एक बार अकबर ने भी पूछा बीरबल से कि जो हमारी इच्छा है इंद्रिय तृप्ति की, कब तक रहती है? तो बीरबल ने कहा, जहां पना ये जो इच्छा है तो मरते दम तक खत्म नहीं होती। शरीर खत्म हो जाता है, इच्छा नहीं खत्म होती। शरीर जर्जर हो जाता है, इच्छा खत्म नहीं होती। तो अकबर को विश्वास नहीं हुआ, कहते ये कैसे हो सकता है? कहता है महाराज मैं आपको बताऊंगा, तो आपने सुना ही, एक कथा सुनी है ना, तो कैसे वो लेके जाता है महाराज को और बोलता है, महाराज आप जब इस कमरे में एंटर करना, ये व्यक्ति जो है ये मरणासन है, डेथ बेड पे पड़ा हुआ है, अब देखना इसकी नजरें कहाँ जाती हैं, और आप ऐसा करो आपकी जो जवान लड़की है उसको साथ लेके चलो आप, बहुत खूबसूरत लड़की थी। तो वही होता है, जब वो जैसे ही राजा सम्राट सारी दुनिया का राजा जो है वो एंटर कर रहा है, साथ में उसकी लड़की एंटर कर रही है, और व्यक्ति वो मरणासन्न है। तो जब अकबर देखते हैं तो उसकी नजरें जो है उन लड़की की तरफ है, राजा की तरफ जाननी है कि राजा मुझे मिलने आया है। तो इससे पता लगता है कि कितनी स्ट्रांग है ये। रूपा जी ये उदाहरण दिया करते थे। सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्ति की भावना जो है बहुत कूट कूट के भरी हुई है और इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा तभी जाएगी ये। और अगर हम ये प्रयास नहीं करते तो फिर हम जो आध्यात्मिक जीवन जो है उससे हम हाथ धो बैठेंगे, हायर टेस्ट को हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। हायर टेस्ट कहते हैं ना, किताब भी एक हायर टेस्ट। हायर टेस्ट हम लोग ऊंचा ऊंचा स्वाद, तो ये जो है निकृष्ट है, ये स्वाद जो है, ये जो आनंद है, ये जो प्लेजर है, ये निकृष्ट है। आत्मा इससे कुछ ज्यादा चाहती है ना, आत्मा इससे तुष्ट नहीं है। इसीलिए इतना इंद्रिय तृप्ति होने के बाद भी फ्रस्ट्रेशन होती है, इसीलिए लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं सब कुछ होने के बाद, है ना। जैसे शीला बाबा जी कहते हैं कि ये लड्डू वैसा जो खाया वो भी पछताया, जो ना खाया वो भी पछताया। इंद्रिय तृप्ति तो ऐसी है क्योंकि आप करने के बाद भी आप अनसेटिस्फाइड रहते हो, ये नहीं होता कि आप सेटिस्फेक्शन हो गई, आपको आप संतुष्ट हो गए। तो इसीलिए मनुष्य जीवन में आके हमें जरूर प्रयास करना है कि हम हायर टेस्ट लें, जिससे हमें, जिसके लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। और उसके लिए जरूरी है कि हम जाने कि हमारा जो ये जो फंस गए हैं हम इस चक्कर में, सेंस ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में फंस गए हैं, उसका कारण है हमारा ये मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो, जिसे हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस शरीर से, शरीर से, मन से, बुद्धि से, अपने आप को भौतिक समझ रहे हैं हम। और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा अहंकार। अब जानते हैं जो ये जो भौतिक परतें हैं ये एक के बाद एक है ना, पृथ्वी जो है उससे 10 गुना ज्यादा पानी है। ब्रह्मांड को जब देखते हो, ब्रह्मांड जो भरा बना हुआ है, पृथ्वी से ढका हुआ है सबसे पहले, पृथ्वी से ऊपर फिर क्या है, 10 गुना ज्यादा पानी है, इतनी मोटी परत, उससे भी मोटी परत जो है फिर अग्नि की है, उसके फिर वायु है, फिर आकाश। वो सबसे ज्यादा, सबसे मोटी परत किसकी है, फॉल्स ईगो, अहंकार, मिथ्या अहंकार। तो उसको पेनिट्रेट करना कितना मुश्किल है, वही उसी कारण से जो है हम इस संसार में डाल दिए गए हैं, वही हमें फंसा रहा है। हम यहां पे भगवान बनना चाहते हैं, लॉर्ड इट ओवर, हम चाहते हैं कंट्रोलर बनना, इंजॉय करना, ये है। और इसलिए सेंटर, हम सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बनना चाहते हैं। भगवान तो है, भगवान तो ओरिजिनली सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, ये तो उनकी, ये तो डेफिनेशन है। भगवान का मतलब ही है कि जो सेंटर में है, जिनसे सब कुछ निकला है। लेकिन हम वो पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं, इसी कारण से ये सारी हमारे चीजें हैं। इसीलिए हम ज्यादा धनी बनना चाहते हैं, ज्यादा विद्वान बनना चाहते हैं, ज्यादा ज्यादा करना चाहते हैं। और इसी कारण से हम जो हमें लेसन नेचर, भगवान जो लेसन देते हैं हमें, वो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, रिएक्ट करते हैं उससे हम, और फिर फंस जाते हैं। भगवान जो है वो ऑल मर्सीफुल है, भगवान की डेफिनेशन ये है ना कि बहुत ज्यादा वो दयावान है। तो फिर जब भी कोई हमें परिस्थितियों में आते हैं तो हम फिर रिएक्ट क्यों करते हैं, फिर भगवान के द्वारा ही तो दी गई हैं वो परिस्थितियां, हम रिएक्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि हम भगवान बनना चाहते हैं। हमारी फॉल्सी को, हमारा मिथ्या अहंकार जो है, जो हमें लेसन मिल रहा है वो हम लेसन लेना नहीं चाहते, हम भाग जाते हैं उससे। और इसीलिए हमारी प्रोग्रेस जो है, आध्यात्मिक प्रोग्रेस जो है, रुक जाती है। जैसे हम अगर पढ़ाई में, स्कूल में जाते हैं तो हम मान लो 10 साल से स्कूल में हैं, है? तो इसका मतलब है कि हमें 10वीं क्लास में होना चाहिए। लेकिन हम अगर हम 10 साल से स्कूल में और पहली क्लास में बैठे हुए हैं तो तुमको बड़ी अच्छी बात नहीं है ना, ये तो कोई सीनियरिटी नहीं हुई ना, बल्कि उसको कहेंगे क्या कैसा है, मतलब 10 साल से फेल हो रहा है, वो तो सीनियर नहीं है ना। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जैसे ही जब एग्जाम का समय आता है वो भाग जाता है व्यक्ति, जैसे ही साल भर के बाद एग्जाम आता है पहले उसने प्रिपेयर ही नहीं किया होता और फिर एग्जाम भी नहीं देता वो। तो इसी सिलसिले से अगर हम भी एडवांस करना चाहते हैं, हम भी स्पिरिचुअली एडवांस करना चाहते हैं, तो जब हमें ऐसे मौके आए तो उसको हमें उससे घबराना नहीं है, वो भगवान दे रहे हैं क्योंकि वो एडवांस करना चाहते, वो चाहते हैं आपको एक हायर रेल पे लाना, आपकी कॉन्शियसनेस को वो तरीका यही है और कोई तरीका ही नहीं है। और जैसे ही उस तरह की कोई परिस्थितियां आती हैं हम उनसे देख करते हैं ऐसा कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया, और हम जो है उसको भौतिकता से देख के और उसका वो जो हमें फायदा होना था वो फायदा नहीं उठाते। कहने का मतलब है कि ये जो सारी चीजें हैं ये प्रैक्टिकल है, ये थ्योरेटिकल चीजें नहीं है, इनको हमें प्रैक्टिस करना है। ये सारी चीजें जो है हमें हायर टेस्ट देने के लिए है, वो असली आनंद देने के लिए है जिसकी हमारी आत्मा बनी हुई है। सत्चित्त आनंद, सत्चित्त और आनंद देने के लिए है सारे जो व्यवस्था है। जैसे आपने वो कथा सुनी है ना, वो एक ऋषि की और एक चूहे की, सुना ना सबके नाम बताओ।
एक चूहा होता है,
सुनाओ हंसते के पास ठीक तो सुना रहा है, चूहा होता है गुड वेरी गुड ना, इनकी तुम परवाह नहीं करो वैसे हंस रहे हैं, तुम मतलब नहीं सुना।
ऋषि के पास आते हैं, ऋषि को कहता है कि बिल्ली मेरे पास आ रही है कि मुझे बिल्ली बना दे, तो ऋषि उनको बिल्ली बना देते हैं। फिर वो बिल्ली उसके पास आती है कि मुझे जो कुत्ता वो सता रहा है मुझे कुत्ता बना, तो उनको कुत्ता बना देते हैं। ऐसे ऐसे करके भेड़िया बन जाते हैं, तो भेड़िया ऋषि को ही काटने के लिए दौड़ते हैं, तो फिर दोबारा उनको चूहा बना देते हैं, पुनर्मूर्ति को पावर है।
वेरी गुड, यही कथा है, लेकिन वेरी गुड। लेकिन इसका हम दूसरी तरह से भी हम देख सकते हैं, कई चीजें हम कई लेसन दे सकते हैं कि वो चूहा आया ऋषि के पास प्रॉब्लम लेके, तो जब प्रॉब्लम सॉल्व की ऋषि ने, प्रॉब्लम सॉल्व की मतलब कि उसके सरकमस्टांसेस बदल दिए, वो चूहा था वो बिल्ली बना लिया, लेकिन उसकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, अब प्रॉब्लम है क्योंकि बिल्ली से ऊपर कुत्ता है, क्योंकि जैसे ही वो बिल्ली बना के जाता है फिर तो एकदम वापस आ जाता है। वो कहते हैं महाराज वो तो कुत्ता भोंक रहा है, फिर कुत्ता सता रहा है, अब तो पहले बिल्ली सता रही थी अब तो कुत्ता सता रहा है। तो दयालु महाराज कहते हैं ठीक है तो कुत्ता बन जा, तो एकदम फिर वापस आ जाता है। कहते महाराज अभी तो कुत्ता क्या, तो शेर सता रहा है मुझे, तो कहते तू शेर बन जा फिर। अब शेर बनता है तो फिर जैसे बता रहे हैं ऋषि को खाने लगता है, तो मुश्का पुनः मुश्का भाव। तो एक तो हम ये से देख सकते हैं कि वो ग्रेटफुल नहीं है, वो जो चूहा है शेर बन गया वो ग्रेटफुल नहीं है, उसको ग्रेटफुल होना चाहिए, मतलब ग्रेटफुल नहीं है इसलिए ग्रेटफुल बन गया, वो मां मूर्ख बन गया, ऋषि को ही खाना चाहता है। और दूसरा ये है कि सरकमस्टांसेस बदलने से स्थितियां बदलती नहीं है, ज्यादातर ये सोचते हैं कि सरकमस्टांसेस बदल लेते हैं, है ना, बहुत माया बहुत सतारी है, ये डिजायर्स लस्टी डिजायर बहुत सतारी है, शादी कर लेते हैं, सोचते हैं ना ज्यादातर, ऐसा कुछ भी नहीं होता उससे, वो जो डिजायर्स है वो तो सताती रहेंगी क्योंकि वो तो सोल्यूशन है ही नहीं। अगर आग जो है उसमें आप घी डालते जाओ घी डालते जाओ तो आग बुझेगी थोड़ा, खुद तो और भमकेगी, तो या बहुत तंगी है, मंदिर में बहुत तंगी है, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, मैं बाहर चला जाता हूँ, बाहर आके कोई मैं नौकरी कर लेता हूँ, बाहर जाके कुछ और कर लेता हूँ, फैसिलिटीज ज्यादा हो जाएंगी। ये ऐसा सोचना जो है ना, ये है कि हम सरकमस्टांसेस बदलेंगे और हमारी स्थिति बदल जाएगी। बाहर का मतलब आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं ना कि लोग, चलो ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, अमेरिका चलते हैं, वहां बहुत अच्छा है, भक्ति भी करेंगे और फैसिलिटीज भी होंगी बहुत सारी। यहां भक्ति तो है लेकिन इतनी फैसिलिटीज नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है यहां, तो उससे जो है अंतर नहीं आएगा। अंतर आएगा जब हम इसको कन्फ्रंट करेंगे, अपनी जो सिचुएशन है उसको कन्फ्रंट करेंगे हम, जिस भी सिचुएशन में है, है ना। जैसे भजन भी है ना, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही है, जाहे विधि राखे राम, जिस हालात में भगवान, तो फिर भगवान ही क्या है, इसका मतलब तो भगवान का कोई कंट्रोल ही नहीं है, इसका मतलब तो हमारा कोई भगवान पे विश्वास नहीं है। अगर भगवान ऑल मर्सीफुल है, भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, वो कुछ भी कभी भी किसी के साथ कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों हम दुखी हो रहे हैं, प्रॉब्लम हमारे अंदर है ना। उन्होंने तो सब अच्छा अरेंजमेंट किया है हमारी प्रोग्रेस के लिए, इसीलिए आप देखिए जितने भी बड़े हमारे आचार्य हैं वो कभी भी नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाते, चाहे श्री प्रभुपाद जी को लीजिए या कुछ भी बड़े आचार्य को लीजिए, उनका जीवन देखिए, वो हर चीज में उन्होंने पॉजिटिविटी देखी, इसलिए वो आगे आगे बढ़ते चले गए, रुके नहीं, स्टैग्नेंट नहीं रहे। तो यही प्रैक्टिस करना है, इसीलिए यही तभी हमें जो है हायर टेस्ट मिलेगा, नहीं तो बस एक सपना ही रह जाएगा, हायर टेस्ट एक सपना ही रह जाएगा, हम बस देखते ही रह जाएंगे और हम खुद नहीं उसको अनुभव कर पाएंगे। किसी भी सिचुएशन को आप पॉजिटिवली ले सकते हो। भक्ति सिद्धांत महाराज कहा करते थे कि जो व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज करता है वो आपका दोस्त है, जो आपको ग्लोरीफाई करता है वो दुश्मन है आपका, भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसे कहते थे। और अगर आप क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने प्रोग्रेस के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, इसका मतलब आपने में, आप में कुछ वो है ही नहीं, रूम फॉर इंप्रूवमेंट है ही नहीं। नहीं, अगर कोई क्रिटिसाइज करता है आपको, कोई आपका कोई नुक्स निकालता है और आप उसको सुन नहीं सकते, आप उसी में दोष ढूंढने लग जाते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप तो सिद्ध हो गए, आप में कोई है ही नहीं, कोई नुक्स ही नहीं, ऐसा कोई होता है। मेटीरियल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं तो मेटीरियल वर्ल्ड में तो देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट, हमेशा कुछ ना कुछ चीज रहेगी जिसको हम इंप्रूव करेंगे। तो इसीलिए हमें जरूर ऐसे फ्रेंड्स की जरूरत है जो हमारे आसपास रहे और हमें बताएं, हमारी सूक्ष्म गलतियों को बताएं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कोई आपको आगे कहता है कैसा तुम्हारा ये थोबड़ा है, बिल्कुल घिन आती है आपको देख के, कैसा थोबड़ा बनाया हुआ है। अब आम व्यक्ति तो रिएक्ट करेगा ना, कहते तेरा भी बना दूंगा ऐसा थोबड़ा, कैसे रिएक्ट कर सकता है, तू भी चाहता है तेरा थोबड़ा से बन जाए। ये है नेगेटिविटी का नेगेटिविटी, ईंट का जवाब पत्थर से, उसने ऐसे कहा मैं ऐसे बोलूंगा उसको, तो नेगेटिविटी का हो गया ना, बोलबाला हो गया नेगेटिविटी का, आज सारी हमारी पढ़ाई ये भाव हम सब वहीं के वहीं रहेगी। लेकिन आप उसका इस तरह से भी जवाब दे सकते हो, कहते हैं आप प्रभु जी जो आप कह रहे हो ठीक ही कह रहे हो, मेरा थोबड़ा ऐसा ही है, लेकिन प्रॉब्लम आपकी है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आपको मेरा थोबड़ा पसंद नहीं आ रहा। बात तो वही कह रही, लेकिन कितने पॉजिटिव वे में गई ना आपने, है ना, तो बात जो है वो गई नीचे चली गई ना, ये तो नेगेटिविटी को वो प्रोड्यूस कर रहे हो। आज समाज में नेगेटिविटी तो है, सारा समाज जो है कितना देखो, टेररिज्म बढ़ रहा है, आपके यहां तो नहीं है डर टेररिज्म का इतना, हमारे मंदिर में बहुत ज्यादा है, हिट लिस्ट में है, बता आपको हमारा मंदिर जो है और जो लोटस टेम्पल है वो हिट लिस्ट में है टेररिस्ट की, इसलिए हम रोज प्रार्थना भी करते हैं राधा पास हाथी को, और सारी हमने सिक्योरिटी भी बढ़ाई है, सारे अरेंजमेंट किए हैं। क्या कारण है? अगर नेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है, अग्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग तो इसको प्रैक्टिस करें ना। अगर हम ही प्रैक्टिस करके नहीं दिखाएंगे लोगों को, तो लोगों के पास तो कुछ और एग्जाम्पल है ही नहीं। बाहर समाज में क्या है? बाहर समाज में तो यही है बस, पैसा, ये चीजें थोड़ा हमें जो है आनंद देने वाली है। एक रिसर्च किया है कि उन्होंने ये पाया है कि ज्यादा पैसा जो है वो हैप्पीनेस नहीं लाता, कष्ट लाता है बल्कि। और हम सब लोग पैसा पैसा पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और पैसा होना चाहिए, और पैसा होना चाहिए। यूज क्या है पैसे का? यूज क्या है? किस लिए पैसा चाहिए आपको, ये देखना चाहिए ना। मंदिर बनाने के लिए पैसा चाहिए क्या? भगवान के भोग लगाने के लिए पैसा चाहिए क्या? आ जाएगा वो तो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब आपको चाहिए अपने लोभ के लिए, अपने काम वासनाओं के लिए, इसको पूरा करने के लिए, अपने अहंकार को वो करने के लिए, तो उसकी कोई तो लिमिट ही नहीं है। फिर कोई तो लिमिट ही नहीं है, क्या करे, तो हमेशा ही आनंद अचर हो गया। तो इसीलिए ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति की जो भावना है, बहुत ही पावरफुल है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर प्रयास करें, अगर इसको हम कार्य करें, तो ये हम इसको पार कर सकते हैं। संभव है ये, ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। हमारे आचार्यों ने करके बताया है, इसको हमें प्रैक्टिस में लाना है, रोज रोज की प्रैक्टिस में लाना है। और हायर टेस्ट के लिए हमें डिटैच होना है, लोअर टेस्ट से डिटैच होना है हमें। जैसे मान लो, जैसे एक उदाहरण है, एक व्यक्ति था, वो पहाड़ से गिर रहा है, पहाड़ से ऐसे गिर रहा है। वो गिरते गिरते उसके हाथ में एक जड़ आ जाती है, उसके पेड़ की जड़ आ जाती है। अब जड़ आ जाती है, लेकिन वो पेड़ भी उखड़ना शुरू हो जाता है पहाड़ के साथ, तो उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती ना जड़ की। तो फिर उसको भगवान याद आते हैं, भगवान मेरी सहायता करो, हे भगवान, गॉड प्लीज हेल्प मी। तो आवाज आती है, बेटा तू इस जड़ को छोड़ दे। वो कहता है, कौन पागल है जो इस मुसीबत में मेरे को ऐसे बोल रहा है? और भगवान नीचे खड़े होते हैं, वो जड़ को छोड़ेगा तभी तो तुझे पकड़ूंगा नीचे। ऐसी हमारी अटैचमेंट्स है ना। अभी मेरे दोनों हाथ ही ऐसे भरे हुए हैं, ऐसे हाथ भरे हुए हैं, और भी ज्यादा भरे हुए हैं। भगवान मुझे कोई स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं, कहां से देंगे? हाथ तो मैंने पहले ही भरे हुए हैं छोटी मोटी चीजों से। जैसे हमने देखा है कई बार, ये जो इसमें रहते हैं, ये शेल्टर में, नाइट शेल्टर में रहते हैं ना कई लोग, उनकी कोई थोड़ी मोड़ उनकी चीजें होती हैं बेकार की, बिल्कुल कबाड़ होता है उनको। उनसे अगर आप वो भी लेना चाहो ना, वो भी नहीं देना चाहेंगे वो, आप इतने अटैच होते हैं। तो ये हमारी इस तरह से चीजों की, जो बेकार की चीजें हैं, उससे हम अटैच है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जिसमें मैं बहुत ज्यादा कृपा करता हूं ना, उसका सब कुछ हर लेता हूं। कहते हैं ना, कौन से अध्याय में है? टेंथ में है? नहीं नहीं नहीं, हाँ वेरी गुड, 1084 में, जब वो वहां पे वो स्नान कुरुक्षेत्र के उसमें जाते हैं ना वो, हाँ हाँ, वहां युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, यस, वो उसमें कह रहे हैं कि सब कुछ हर लेता हूं मैं, शनै शनै, सब कुछ धीरे धीरे उसका हर लेता हूं जिसमें मैंने बहुत कृपा करनी है। और प्रभुपाद जी को यही, जब प्रभुपाद जी का सब कुछ चला गया है, उनके बच्चे चले गए, उनकी पत्नी चली गई, उनका घर चला गया, उन्होंने जो भागवतम भगवत गीता की टिप्पणी लिखी थी वो भी उनकी पत्नी ने रद्दी में भेज दी, बिजनेस चला गया, उनका बिजनेस ठप हो गया, कुछ नहीं था, पेनीलेस, होमलेस, कुछ नहीं था उनके पास। तब प्रभुपाद जी को ये श्लोक याद आया कि भगवान जब बहुत कृपा करते हैं किसी के ऊपर, तो सब कुछ कर लेते हैं, और हम दुखी होने लग जाते हैं। प्रभु जी मैं चैंटिंग भी कर रहा हूं, चार नियमों का पालन भी कर रहा हूं, दीक्षा भी ले ली है मैंने, भगवान को भोग लगाए बिना खाता नहीं हूं, फिर भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? सुना नहीं आपने ऐसी बात? कई बार ऐसे लोग बोलते हैं भगवान कृपा नहीं कर रहे, वो यही तो भगवान कृपा कर रहे हैं कि छीन रहे हैं तुम्हारे से छोटी छोटी अटैचमेंट, क्योंकि बड़ा देना है उन्होंने, बड़े बड़े गिफ्ट देने हैं तुम्हें, क्यों आप इससे अटैच रहे छोटे छोटे से अटैच हो छोटी छोटी चीजों से? जैसे मान लो कि व्यक्ति सपना देख रहा है, कोई सपना देख रहा है व्यक्ति और उसको उसमें शेर नजर आता है, शेर उसको खाने ही लगता है, बस वो डर रहा है, वो डर रहा है। अब उसको बचाने का तरीका ये है ना कि उसको जगा दो, शेर खत्म, सब कुछ खत्म, डर खत्म, लेकिन जागना नहीं चाहता। वो कहता है कि कोई व्यक्ति आए मेरे सपने में घुसे और इस शेर को भगाए, संभव है क्या? नहीं बात, लोग यही चाहते हैं, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करो हमारी, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम कहते हैं हमें जगा देते हैं तुम्हें भैया, जगा देते हैं, जाग जाओ, जागना नहीं चाहते हो। प्रभु जी प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये समझ नहीं आ रही। आप कह रहे हो चैंटिंग करो, ये समझ नहीं आ रही बात। प्रॉब्लम तो ये है, मतलब मेरे सपने में घुसो और इसको मारो शेर को, ऐसे कभी सॉल्व होगी प्रॉब्लम? और ऐसे ही लोग हैं, लोग बुद्धू बनाए जा रहे हैं उनको, वो किसी के सपने में घुस नहीं सकता, लेकिन वो भी सपने देख रहे हैं, वो भी सपने देख रहे हैं, बस चीटर्स गेट चीटेड इन दिस वर्ल्ड, वो भी धोखा दे रहे हैं, वो धोखा खा रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं, बस हम सोच रहे हैं जी हम खुश हैं सपने में। और प्रभुपाद ने कहा जगा दो, जीव जागो जीव जागो, गोरा चांदेर बोले, जगाने का कार्य कर रहे हैं हम, सारी प्रॉब्लम्स खत्म। तो सपने में ले रहे हो, प्रॉब्लम है थोड़ा, तो इसी तरह से जो वाली अटैचमेंट्स हैं, सपने वाली अटैचमेंट्स हैं, इसमें कुछ रखा थोड़ा हुआ है, तो आत्मा के लेवल पर जब आके देखेंगे तो ये कुछ है ही नहीं, कुछ सीन है ही नहीं यहां पे। जैसे रात को जो हमने सपना देखा उसका कोई अस्तित्व है? अब रात को जो हमने सपने में कितनी भी बातें देखी, मान लो सपने में हमें करोड़ रुपया मिल गया, क्या अस्तित्व है उसका? इसी तरह से इस डे ड्रीमिंग का भी कोई अस्तित्व नहीं है जब हम आत्मा के लेवल से देख रहे हैं, कोई भी अस्तित्व ही नहीं है इसका। ये समझाती बात है, यही कह रहे हैं श्रील बाबा जी, यही बता रहे हैं हमें, ये है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। हायर टेस्ट ले हम और ये छोटी चीजों से डिटैच हो हम, और हम वेट करें, इंपेशेंट नहीं हो जाए कि अभी भी नहीं मिला हायर टेस्ट, इतने साल हो गए अभी भी नहीं मिला। विश्वास रखना है हमें, जैसे कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, मिलेगा जरूर मिलेगा, वेट करो। और फिर आपको जब आप इस तरह से वेट करोगे ना, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो मुंजान व्यात कृतम विपाकम हृदय वाग वपुर भी विद्धन नमस्ते जीवेत्य मुक्ति पदे सदाय भाग। आपका ये अधिकार है, उत्तराधिकारी हो आप भगवान के धाम के, सिर्फ आपको विश्वास से हर स्थिति में रहते चले जाना है बस। और भगवान को हृदय वाग वपुर भी हृदय से, वाक से और शरीर से बस नमस्ते करते जाना है, ग्रेट ग्रेटफुल रहना है हर हालात में। ये है भक्ति, ये भक्त के लक्षण है। भक्त तो है नेगेटिविटी को नहीं फैलाता, हर चीज में पॉजिटिविटी देखता है। कैसे नेगेटिव हो कैसे सकता है जब हमारे भगवान दया दयालु है, वो गलत कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? जो भी सिचुएशन में जिस भी परिस्थिति में आए हैं भगवान ने मुझे कुछ सिखाने के लिए दी है और उससे हमें सीखना है। जैसे ये सारा प्रसंग भी तो सिखाने के लिए है, शिव जी अब सीख जाएंगे इससे कैसे पागल हो गए, कैसे हम फंस गए हो। तो इस तरह से भगवान हमें भी सिखा रहे हैं, हमारे साथ भी कई दिन में कई सारी ऐसी बातें होती हैं जैसे हम विचलित हो जाते हैं। विचलित नहीं होना हमें, और इस पर विश्वास करना है, इसीलिए हमें अखबारें टेलीविजन हार है, क्योंकि विश्वास बनता नहीं है कि हम अविश्वास वाली चीजें जो हैं और जो हमें जो चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, जो नहीं देखनी चाहिए, वो भी हम देखते हैं, इसलिए जो है हमारा जो विश्वास है इधर बनता नहीं है। इसलिए असत संग त्याग ही वैष्णव, इन चीजों को नहीं देखना हमें, न्यूज़पेपर है, बेकार की गप्पे हैं, प्रजल पाल है, तब हमें हायर टेस्ट आएगा। और हायर टेस्ट जब आएगा बहुत, वो है मनुष्य जीवन का लक्ष्य, वो है मनुष्य होना। बाकी ये लोअर टेस्ट जो है ईटिंग मीटिंग डिफेंडिंग, पशु भी कर रहे हैं, कोई फ्री में कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर का मतलब ये है कि हम हायर टेस्ट को ग्रहण करें, और ये जो लोअर टेस्ट है इससे हम बाहर निकलेंगे। लोअर टेस्ट है, निकृष्ट है, ये हमें सेटिस्फेक्शन नहीं देता, संतुष्टि नहीं देता, बल्कि उल्टा है, नेगेटिविटी बढ़ाता है। भगवान से जो ईर्ष्या है हमारी, वही हमारी ये डिजीज है, उसी कारण से हम आ गए हैं। ईर्ष्या मीन्स कि हम भी भगवान बनना चाहते हैं, इस डिजीज से टूट जाएं हम। अगर हमें कैसे कहते दासा 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 अनुदास, ये स्थिति में रहेंगे हम सुरक्षित रहेंगे और हम एडवांस करेंगे और हम हायर टेस्ट को रिलिश करेंगे। और अगर हम बॉस बनना चाहते हैं, हम हीरो बनना चाहते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, तो उसमें क्या है, कुछ नहीं है। बाहर के संसार में इसीलिए तो इतनी मुसीबत है, एक के ऊपर एक। जैसे प्रभुपाद जी जैसे एक बार गए जापान में, तो उनका वो उन्होंने मैकमिलन से अपनी भगवद गीता जो है वो छपवानी थी, तो वो भी बैठे हुए थे, उसके जो सारे डायरेक्टर वो लोग थे वो बैठे हुए थे वहां। तो एक व्यक्ति था, तो उससे पूछा कि आपका क्या गोल क्या है आपका, तो वहां पे बहुत सारे कार्ड्स रखे हुए थे, सबके विजिटिंग कार्ड रखे हुए थे सब लोगों के। तो उसका कार्ड नीचे था, तो उसने नीचे से कार्ड निकाल के ऊपर रख दिया, कहते हैं ये मेरा गोल है। अब समझिए पढ़ा हुआ आपने पास है, कि मैं सबसे ऊपर हेड बनना चाहता हूं, सबसे बॉस बनना चाहता हूं, टॉप पे जाना चाहता हूं। और इसी कारण से कितनी लड़ाइयां झगड़े ये कितना है, एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है। तो लेकिन ये यही अगर हम एम यहां लाए हो, तो ये तो फिर यहां हमारा एम होना चाहिए उल्टा, दासा 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 अनुदास। तो यही थोड़े से विचार थे इसके ऊपर, बाकी अभी तो समय है, आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, या किसी का कोई कमेंट हो। हाँ
बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने समझाया। आपने बताया कि जब सिचुएशंस ऐसी चुनौतीपूर्ण आती हैं तो हमें जागना चाहिए और इस फिलॉसफी को अपने जीवन में उतारना चाहिए, और वो सिचुएशन कई बार इतनी हमें भ्रमित कर देती हैं, दूसरे व्यक्ति को भी सलाह देते हैं वो समझ में नहीं आता, उनको लगता ही नहीं कि ये फिलॉसफी प्रैक्टिकल है।
तो ये फिलॉसफी इम्प्रैक्टिकल है।
हाँ, तो कैसे खुद भी ऐसी सिचुएशन से निकला करें, दूसरे की भी मदद कर सकते हैं।
गुड, तो इसके लिए हमें पहले से ही अपने आप को ट्रेनिंग देनी है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कोई फायर ब्रिगेड वाला है, फायर ब्रिगेड का कार्य करता है, तो जब वो आग लगती है, आग का उसको संदेश आता है, तो एक सेकंड वेस्ट नहीं होता उसका, एकदम बूट डाले, एकदम वो झपटा गाड़ी में सारे ना 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 चूट करता है एकदम। या कोई डॉक्टर है, इमरजेंसी आती है, तो ये नहीं कि जब खून देखता है तो बेहोशी हो जाता है वो, तो क्या ट्रेनिंग ली उसने। ओ भैया अभी तो काम है एकदम, और वो एकदम उसको कोई डर नहीं लगता, चाहे सारे खून से खून लथपथ हो, वो घबराहट नहीं होती, एकदम उसको चीरता है काटता है, जहां उसने टांका लगाना है फिट कर देता है उसको, है कि नहीं। तो इसी तरह से हमें ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग का मतलब है कि हमें अपनी साधना, अपनी चैंटिंग, अपने जो सारे कार्य हैं उनको बहुत ध्यान से करना है, ये हमारी ट्रेनिंग है। ये जो हमारी ये ट्रेनिंग जो हमारी पक्की होगी, तो फिर हम विचलित नहीं होंगे। इसका मतलब है कि ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं कमी है, तब हम विचलित होते हैं। ये लोग क्यों नहीं विचलित होते ये, और फिर जब भी हमें मौका आए और हमें अभ्यास करना है, अगर हम मान लो चूक गए तो अगली बार हमें अभ्यास करना है, है ना, और इसीलिए भक्तों के संग में रहना है, भक्तों के संग में रहना है हमेशा। तो भक्तों के संग में रहेंगे तो भी हमें तो ट्रेनिंग से होएगा, कई बार हम विचलित भी होंगे क्योंकि ट्रेन नहीं है, लेकिन जब हम ट्रेनिंग लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे तो एक दिन फिर ऐसा ही होएगा, फिर हम नहीं होंगे, फिर हम तो अभी हम इसका मतलब कि अंडर ट्रेनिंग है, हम ट्रेनिंग लेते रहना है। अनट्रेन्ड जो है ना अभी हम, तभी हम ऐसे कर जाते हैं, क्योंकि नहीं तो ऐसी कोई जैसे जैसे मैंने उदाहरण दिया फायर ब्रिगेड, फायर का कितनी बड़ी इमरजेंसी है, कितना बड़ा क्राइसिस है, वो बिल्डिंग में आग लग गई, कितने लोग तो भागते हैं, जब आग लग जाती है सारे लोग तो त्राही त्राही मच जाती है, भगदड़ मच जाती है, लेकिन जो फायर ब्रिगेड वाला बंदा है वो तो एंटर कर जाता है उसमें आग में, क्योंकि उसने पूरी ट्रेनिंग ली हुई है। इसी तरह से जब हम ट्रेंड होंगे तो हम ऐसी सिचुएशन में जहां पर लोग परेशान हो रहे हैं हम कूल रहेंगे, तो ये सच बात है, क्योंकि सिचुएशंस नहीं ऐसी होती, आप कैसे रिएक्ट करते हो उससे, वो सारी चीजें हैं, कॉज एंड इफेक्ट ही तो है ना, आप कैसे सिचुएशन से रिएक्ट करते हो वही आपका आगे फिर फल होगा उसका, कर्म फल, कर्म फल, ये चक्कर है ना, ये एक्शन रिएक्शन, फिर रिएक्शन जो है वो दूसरी चीज का एक्शन बन जाता है, ये समझ आती है बात, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, मतलब जो चीज आप करते हो जो एक्शन करते हो उसका जो रिएक्शन है वो अगले एक्शन का कारण बनता है, ये समझ रहा है। जैसे मान लो ये बैठा हुआ है, मैंने इसको चाटा मारा, रिएक्शन है ना, तो इसका फल क्या है, मुझे चाटा मारेगा, फल मिला मुझे, अब ये फल जो है मेरे लिए ये हो गया एक्शन का कारण, मैं इसको मारूंगा चाटा, चलना शुरू हो गया ना, यही ऐसे ही एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, आप एक्शन करते हो उसका रिएक्शन आपको मिलता है, वो रिएक्शन फिर आपको पुश करते हैं एक्शन करने के लिए, उसी ये संसार है, इसमें चक्कर में फंसे रहते हो, जन्म बीमारी बुढ़ापा मृत्यु, ये चक्कर है, सारा चक्कर में चलते रहते हो, चक्कर खत्म ही नहीं होता एक्शन रिएक्शन का। तो इससे निकलने का तरीका यही है, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, इस चीज को हम पूर्ण फेथ से हम करें, और जैसे जो भी सिचुएशन आए उसको हम ये समझें कि राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर है, इनके अंडर सब कुछ हो रहा है, ये चाहे कभी भी किसी को कुछ भी कर सकते हैं, ये पूर्ण कंट्रोल में है, वो पूर्ण सक्षम है कुछ भी करने के लिए, हम अपनी जो है ड्यूटी जो हमारे हाथ में है वो हम पूर्ण रूप से करें और भगवान के ऊपर छोड़ें सब कुछ, हमारे पास जो है वो करें, तो पॉजिटिवली हर चीज को पॉजिटिवली लें, प्रयास करें, प्रैक्टिस करने से होता है, ठीक है, थैंक यू।
अगर हम किसी की मदद करना चाहें जो स्थिति में है तो
क्या क्या, अगर हम
किसी की मदद करना चाहें जो ऐसे परिस्थितियों में परेशान है, परिस्थितियों से परेशान है, और वो जैसे आप कह रहे चैंटिंग सोल्यूशन नहीं ले रहा, स्पिरिचुअल सोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्या करना चाहिए
उसके, उसकी कैसे हम मदद कर सकते हैं, कोशिश करो जितनी मदद उसकी कर सकते हो सपने में घुस के करो, और क्या कर सकते हो ज्यादा उसका फायदा तो होने वाला नहीं है, है कि नहीं, अल्टीमेटली तो उसको जगाना ही पड़ेगा, है ना, तो टेम्पररी उसको लगेगा पर अल्टीमेटली तो उसको जगाना ही पड़ेगा, उसको इस लेवल पे लाना पड़ेगा कि तुम एक आत्मा हो भैया, ये शरीर नहीं हो। जैसे प्रभुपाद जी एक दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे यहां पे आपने कोई जख्म हुआ तो एक ऑइंटमेंट लगा दी तो ठीक हो गया उसका जख्म, वो खुश है जख्म ठीक हो गया, लेकिन 15-20 दिन बाद यहां हो गया उसका जख्म, आप देखा फिर वही ऑइंटमेंट लगा लो, वो लगा लेता है फिर ठीक हो जाता है, फिर यहां हो गया, अब वो परेशान है यार, ये तो हर 15-20 दिन में मुसीबत आ जाती है, वो एक वैद्य के पास जाता है, वैद्य उसकी नब्ज वगैरह देखता है तो कहता है ये तेरा तो खून ही गंदा है, ये दवाई खा तो खून साफ हो जाएगा, वो दवाई खा लेता है उसका खून साफ हो जाता है, कभी बीमारी नहीं होती जीवन में, प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं, इसी तरह का ये उदाहरण है कि अल्टीमेटली तो वो दुखी रहेगा ना, कोई ना कोई, कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आता रहेगा आपके पास, उसकी प्रॉब्लम खत्म होने वाली नहीं है, आज तो आपने उसके सपने में घुस के उसको शेर को मार दिया मान लो, इस तरह से हाइपोथेटिकली मान भी लिया, कल आएगा कि ये सपना आ गया मुझे आते रहेंगे उसको, तो उसको अल्टीमेटली आपको अध्यात्म लेवल में लाना ही पड़ेगा, तो यही प्रयास करना चाहिए हमें, ये इन प्रक्रिया उसको ये प्रकार करना चाहिए। तभी वो खुश होगा, तभी आप भी खुश होगे, क्योंकि आपने रियलिटी में उसकी मदद की, नहीं तो मदद आपकी बेकार गई। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जरूर।
यहाँ पर जो शिव जी के साथ विष्णु भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप दिखा के जो लीला की, इसमें बार बार बताया गया है कि जो भगवान विष्णु का रूप था वो योग माया से शिव जी प्रभावित हुए थे। तो योग माया से प्रभावित हुए थे तो जैसे चैतन्य चरितामृत बोलता है कि आत्मेंद्रिय पृथ्वी वांछा धार भरे काम, तो और कृष्णेंद्रिय पृथ्वी इच्छा धरे प्रेम, तो योग माया से प्रभावित थे तो ये कामों की इच्छा से कैसे?
उनकी उनकी इंद्रियों को थोड़ा ही तुष्ट करना चाह रहे थे। शिवजी जो है भगवान की इंद्रियों को थोड़ा तुष्ट करना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों को, तभी तो उनका वीर्य।
लेकिन प्रभावित तो योग माया से।
हाँ वो बात अलग है, वो तो भगवान कह रहे हैं ना, वो तो लीला करने के लिए कोई भी अपनी कोई भी अपनी वो शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये भगवान शिव जो है उससे प्रभावित नहीं हो सकते माया शक्ति से, इसलिए बताया। लेकिन वो प्रेम नहीं है, काम ही है। प्रेम तब होता है कि उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए वो कुछ करते हैं। जैसे गोपियां हैं, गोपियों का प्रेम है ना, गोपियां काम इच्छा से नहीं प्रभावित होती, वो तो उनको तुष्ट करना चाहती हैं भगवान को। काम ही है, प्रेम नहीं है, भगवान से है वो बात अलग है। क्योंकि वो ये तो बताया कि माया उनको आकर्षित नहीं कर सकती शिव जी को, उससे परे हैं वो। लेकिन हमें तो माया आकर्षित करती है, हमें तो अपने ऊपर लेना है ना, हमें तो माया आकर्षित करती है, नहीं करती? तो हमें तो माया आकर्षित करती है, तो हमें वही लेसन लेना है ना कि हमें जो भगवान की माया है, माया शक्ति आकर्षित करती है, और हमें योग माया से आकर्षित होना है। हमारी स्थिति तो दूसरी है, अभी हम तो माया में पड़े और माया ही हमें आकर्षित करती है। प्रेम नहीं है ये उससे उससे इंद्रिय प्रीति वांछा, कृष्ण इंद्रिय, कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं ना, तो ये शिवजी कृष्ण की इंद्रियों को थोड़ा तुष्ट करना चाह रहे हैं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाह रहे हैं, तभी तो उनसे आकर्षित हो रहे हैं ना। कि वोमेन भगवान के दूसरे रूप से तो नहीं आकर्षित हो रहे। वो
जो शिवजी है ये वो परम वैष्णव को निश्चित रूप से प्रेम के स्तर से he is in highest position, तो वो काम में फंसना है बस।
लीला है ना, लीला है उनकी, ये तो भगवान लीलाएं करते हैं। जैसे कोई एक्टर होता है, जैसे अमिताभ बच्चन है, कुली बन जाता है। अमिताभ बच्चन तो करोड़पति है, वो अरबोंपति है, वो कुली बना हुआ है, तो कैसे समझोगे इसको? लीला एक्टिंग कर रहा है ना। इस तरह से भगवान की लीलाएं हैं, हमें बताने के लिए, हमें इंप्रेस करने के लिए, हमें आकर्षित करने के लिए। जैसे एक्टर लीला अपनी एक्टिंग करते हैं हमें आकर्षित करने के लिए, कुछ संदेश देने के लिए, भगवान भी ये लीलाएं करते हैं। परमानेंट लीलाएं हैं उनकी, और हैवी लीलाएं हैं वो। ये लीलाएं जो है बिजली पे और इस पे और इतनी सारी मुसीबत टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इटरनल लीलाएं हैं, तो भगवान जो करते हैं। लेकिन ये उसी तरह से समझने के लिए हमें समझना चाहिए कि भगवान लीलाएं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हो गए वो, इसका मतलब नहीं कि अगर शिवजी जो है आकर्षित हो गए तो ये लीला है, उनकी लीला चल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि शिवजी अब एक आम व्यक्ति हो गए, भाग रहे हैं लड़कियों के पीछे, भाग रहे हैं नंगी लड़कियों के, ऐसा बोला तो अपराध हो जाएगा बहुत। अगर ऐसे बोलेंगे हम तो बहुत बड़ा अपराध कर लेंगे। शिवजी तो बिल्कुल महादेव है, शंभू है, आपको भक्ति दे सकते हैं, वो सब कुछ दे सकते हैं आपको, तो लीला है ना उनकी, तो उस लीला को एंजॉय करें हम, बस खत्म। इसीलिए भक्तों के एंजॉयमेंट के लिए है लीलाएं, भक्त एंजॉय करते हैं और क्या, और लेसन ले लेते हैं अपने लिए, खत्म।
धन्यवाद।
जय श्री भोपाल की।